الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس پیر والی کلاس میں ہم سورۃ المرسلات کی تفسیر پڑھ رہے ہیں معرفت القرآن کی جلد نمبر 8 سے، اور پچھلی کلاس میں ہم نے اس کا ترجمہ تو پہلے پڑھ لیا تھا، پھر خلاصہ تفسیر بھی ہم نے آدھے سے زیادہ پڑھ لیا تھا. تو پیج نمبر 643 ہے یہ معرف القرآن جلد نمبر 8. اس میں ہم تھے اس آیت کے اوپر کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون، انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون، انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب. انطلقوا کا ترجمہ ہوتا ہے کہ چلیے، چلو، ٹھیک ہے، یعنی کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ اب آپ آگے چلیں. الا کس کس چیز کی طرف؟ ما کنتم بھی تکذبون، اس چیز کی طرف جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے دنیا کی زندگی میں، جس قیامت کے دن کے بارے میں تمہیں انبیاء بتایا کرتے تھے، تم ان کو اس کو جھٹلاتے تھے. تو اب اس کا ذکر ہے، اور ہم چونکہ خلاصہ تفسیر سے پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر جس انداز میں حضرت نے لکھا ہے اسی انداز میں پڑھیں گے. تو تفسیراً لکھتے ہیں کہ آگے قیامت کی بعض سزاؤں کا بیان ہے، یعنی قیامت کے روز کفار سے کہا جائے گا کہ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، کہ تم اس عذاب کی طرف چلو جس کو جھٹلایا کرتے تھے، جس میں کی ایک سزا، یعنی جس کی ایک سزا، اس عذاب کی ایک سزا وہ ہے جس کا بیان اس حکم میں ہے کہ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، کہ ایک سائبان کی طرف چلو، یعنی ایک شیڈ کی طرف تم چلو جس کی تین شاخیں ہیں. شعب جو ہے وہ شاخوں کو، ٹھیک ہے، شاخوں کو کہتے ہیں، اور ثلاثہ جو ہے وہ تین کو کہتے ہیں. تو تین شاخیں ہیں، جیسے قرآن مجید میں ایک اور بھی جگہ لفظ استعمال ہوا نا کہ ہم نے جو ہے وہ انسانوں کو کیا ہے وہ شعوب و قبائل لتعارفوا، کہ ہم نے انسانوں کو شعوب اور قبائل میں پیدا کیا تاکہ انا خلقناکم من کیا ہے وہ آیت، تو وہاں پہ بھی شعوب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ تمہیں ہم نے اس طرح کی نا برانچز میں پیدا کیا ہے، تمہارے سوسائٹی میں ہم نے میں شاخیں پیدا کری ہیں، کہ یہ خاندانی شاخیں ہیں، یہ ٹرائبز ہیں، یہ شاخیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہی لفظ استعمال ہوا ہے شعب، شعب کا، ٹھیک ہے. تو ایک سائبان ہوگا، ایک سایہ ہوگا کہ جس کی تین شاخیں ہیں، جس میں نہ ٹھنڈا سایہ ہے اور نہ وہ گرمی سے بچاتا ہے. یعنی سائے کا تو جو دنیا کے اندر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھئی سائے میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دھوپ سے بچتے ہیں، اور دھوپ میں گرمی ہوتی ہے تو آپ گرمی سے بچ جاتے ہیں، لیکن یہ والا سایہ جو ہے نا اس کے اندر کوئی گرمی سے بچاؤ نہیں ہوگا، اور نہ جو ہے نا یہ دھوپ کی سخت تپش سے اس کے اندر کوئی بچاؤ ہوگا. اچھا، آپ نے اسکرین شیئر تو کر دی ہے، لیکن کون سی اسکرین؟ اچھا، یہ اس طرح سے شیئر کر رہی ہے، نظر بھی آ رہی ہے لوگوں کو؟ चलें, अच्छी बात है, जज़ाकअल्लाह, आपने स्क्रीन शेयर कर दिया। नहीं ठीक है, जिस तरह पहले थी उतनी वैसे वैसे ही सही है। ठीक है जज़ाकअल्लाह। तो नहीं, पिछली क्लास में बल्कि बात भी हुई थी। अच्छा क्या आपने कर दी, सारे उसको ख्याल आया था लेकिन फिर क्या आपको लिखना भूल गया था। मुराद इस साहिबान से एक धुआं है, यानी ये साहिबान किस किस्म का साहिबान होगा? ये एक धुआं होगा, धुआं इतना इतना शदीद होगा, इतना सख्त गहरा होगा कि गोया के वो एक शेड का फायदा देगा। जैसे दुनिया के अंदर बादल होते हैं ना, अब ये बादल भी जो है कोई यानी कोई बाकायदा सॉलिड चीज नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन इतने गहरे होते हैं कि ये भी धूप से बचने का एक साइबान के तौर पे फायदा देते हैं। तो कयामत के दिन भी ये एक धुआं होगा जो जहन्नुम से निकलेगा, और चूंकि कसरत से होगा इसलिए बुलंद होकर फट कर तीन टुकड़े हो जाएंगे। बहुत ज्यादा होगा धुआं ये, और ये फट करके तीन तरह के धुएं बन जाएंगे। कमा फितिबरी अन कतादा व और अच्छा, यानी तिबरी जो है वो एक हजरत जरीर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी एक किताब है, तफसीर की किताब ही गालिबन आपको उनसे उनकी मुराद है। इनकी दो किताबें बहुत ज्यादा मशहूर है, एक तफसीर तिबरी और एक जो है वो तारीख तिबरी, और दोनों किताबें जो है ना वो 30-30 जिल्दों के ऊपर है, 30 वॉल्यूम्स के ऊपर दोनों किताबें अल्लामा तिबरी रहमतुल्लाह अलैह की। तो उस किताब से यहाँ पर इस बात को नकल किया है, जैसे कि तिबरी में लिखा हुआ है और कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है ये वाली बात। अच्छा, के तीन टुकड़े हो जाएंगे उस धुएं के, और आगे फरमाते हैं कि फिरागे हिसाब तक कुफार इसी धुएं के अहाते में रहेंगे, यानी जब तक कुफार का हिसाब नहीं हो जाएगा और वो उससे फारिज नहीं हो जाएंगे, ये कुफार जो है ना वो उसी धुएं के नीचे रहेंगे, जैसा कि मकबूलीन जिल्ले अर्श में होंगे, यानी जो ईमान वाले होंगे, मकबूल ईमान वाले, ठीक है, वो कयामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए में होंगे ना, जिल्ले अर्श, अर्श का साया। उसी तरीके से ये लोग जो हैं वो इस साइबान, धुएं के साइबान के साए में होंगे, ठीक है, और जब तक इनका हिसाब किताब मुकम्मल नहीं हो जाएगा ये इसी धुएं के साए में ही रहेंगे। कदाफिल खाजन, खाजन भी एक किताब है, जैसे तो फरमाते हैं कि जैसे कि खाजन के अंदर लिखा है ये वाली बात। आगे इस धुएं का और हाल मजकूर है कि वो अंगारे बरसावेगा, बरसाएगा, ठीक है, उस धुएं में से अंगारे बरसेंगे जैसे बड़े बड़े महल जैसे काले काले ऊन, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्हा तरमी बिशरर, के तू देखेगा, बल्कि नहीं कि वो तू देखे नहीं, बल्कि तरमी का मतलब होता है फेंकना, रमा यरमी का मतलब होता है फेंकना, ठीक है, तो बेशक वो शरर को यानी अंगारों को फेंकेगी। कल कसर, जो कि कसर जैसे होंगे, कसर कहते हैं पैलेसेस को, महलात को, कअन्नहु जिमालतुन सुफर, गोया कि वो जर्द ऊंटों जैसे हैं, यानी इतने बड़े बड़े होंगे कि जैसे, अच्छा यहाँ पर काले काले ऊंट से इसको इसका तर्जुमा किया है, और वहां पर जो है वो जर्द ऊंटों से, तर्जुमे में इसको जर्द ऊंट करार दिया था, तो वो अंगारे जो है वो इतने बड़े बड़े होंगे। तो आगे लिखते हैं कि कायदा है कि जब चिंगारी आग से झड़ती है तो बड़ी होती है, ठीक है, जब आग से निकल रही होती है ना तो उस वक्त वो बड़ी होती है, फिर वो छोटे छोटे टुकड़े बन जाती है, फिर वो जमीन पर गिरती आ करके। तो इसी तरह यहाँ पर भी ना, जब वो चिंगारी उस धुएं के अंदर से निकल रही होगी ना तो वो कसर जैसी बड़ी होगी, और फिर उसके बाद जो है ना वो ऊंटों जैसी छोटी होकर के नीचे आकर के गिरेगी, ठीक है, और नीचे कौन लोग होंगे? काफिर होंगे, ठीक है। तो वो चिंगारी इतनी बड़ी नहीं होगी कि उससे काफिर जो है वो जल करके खत्म हो जाए, अगर बहुत बड़ी चिंगारी नीचे आकर के गिरे तो फिर तो वो खत्म ही हो जाए ना, लेकिन वो निकलते वक्त तो बड़ी होगी लेकिन गिरते हुए जो है ना वो ऊंटों जितनी छोटी हो चुकी होगी, ठीक ठीक है, तो इससे ये हलाक नहीं हो जाएंगे, बल्कि इनका हिसाब किताब जो है वो इसी हालत में जारी रहेगा। कज़ा फिर रूह, रूहुल मानी भी एक इसी तरह की किताब है तफसीर की। फिर जो लोग इस अमर हक यानी इस वाक़े को झुटला रहे हैं, समझ रखें कि उस रोज हक के झुटलाने वालों की बड़ी खराबी होगी। ठीक है, यानी अल्लाह ताला बार बार जो है वो इस बात को दोहराते हैं, वैलुई यौम इज़न लिल मुकज़्ज़िबीन। कोई सवाल हो जो ये आज पढ़ रहा है इसके बारे में, तो आप चैट विंडो के ऊपर लुक कर लिख करके पूछ ले। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि और आगे वाकया मुतअल्लिक कुफार है, यानी मजीद कुफार के बारे में अल्लाह ताला ने वाकया जिक्र किया है, कयामत के दिन वाला वाकया, कि ये वो दिन होगा जिसमें वो लोग ना बोल सकेंगे और ना उनको इजाजत उजर पेश करने की होगी, सो उजर भी नहीं कर सकेंगे, यानी ना तो आपस में कोई बातचीत कर सकेंगे। ठीक है, हाजा यौमु ला यंतकून, वो बातचीत नहीं कर सकेंगे, वला युअज़नु लहुम फयअतज़िरून, और ना उनको उजर पेश करने की इजाजत होगी। एक तो होता है ना आपस में बातचीत करना, ठीक है, जिससे कि इंसान का दिल थोड़ा बहल जाता है, तो उसकी भी इजाजत नहीं होगी, और ना जो है उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा होगा तो उस इल्जाम का जवाब देने की उनको इजाजत होगी। अच्छा, क्योंकि वाकई में कोई माकूल उजर होगा ही नहीं, और जो लोग इस वाकये हक्कहू को भी झुटला रहे हैं, समझ रखें कि उस रोज हक के झुटलाने वालों की बड़ी खराबी होगी। वैलुन यौम लिल मुकज्जिबीन। आगे भी इसी यौम का बयान है कि उन लोगों से कहा जाएगा कि ये है फैसले का दिन जिसकी तुम तकजीब किया करते थे। ठीक है, हाजा यौमुल फसल, फैसले का दिन है ये, हमने आज तुमको और अगलों को फैसले के लिए जमा कर लिया है। ठीक है, जमाअनाकुम वल अव्वलीन, तुमको भी और जो तुमसे पहले गुजरे हुए लोग हैं उनको भी फैसले के लिए जमा कर लिया है। सो अगर तुम्हारे पास आज के नतीजे और फैसले से बचने की कोई तदबीर हो तो मुझ पर तदबीर चला लो। फइन काना लकुम, बस अगर है तुम्हारे लिए या तुम्हारे पास कई दिन कोई तदबीर, कैद कहते हैं तदबीर को, किसी प्लानिंग को, किसी हरबे को, तुम्हारे पास अगर कोई हरबा है ना, फकी दूनी, तो उस हरबे को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करके देख लो, कर लो जो करना है, कर सकते हो तो कर गुजरो बचने के लिए। ठीक है, तर्जुमे में भी आपको बताया था कि जैसे कोई कोई बड़ा किसी छोटे से, जब कोई लड़ाई होती है ना, तो बड़ा जो है वो छोटे से कहता है कि करो करो, हिट मी राइट, मारो मुझे मारो मुझे, लेकिन छोटा जो है वो बड़े को मार ही नहीं सकता, उसके पास इतनी ताकत ही नहीं होती कि बड़े को जो है वो मार करके गिरा सके। ठीक है, तो अल्लाह ताला उस दिन सबसे बड़े होंगे, और ये जो काफिर होंगे ना, इनकी तो कोई ताकत ही नहीं, लेकिन अल्लाह ताला से कहेंगे, अच्छा अगर है ना तुम्हारे पास कोई ताकत, जो तुम दुनिया के अंदर बहुत चीते बने फिरते थे ना, बड़े जो है ना अपने आप को समझते थे कि मेरे नबियों के खिलाफ जो है ना तुम प्लानिंग करते रहते थे, तुम मेरे मानने वाले ईमान वालों के खिलाफ प्लानिंग करते रहते थे, है ना, आज तुम करके दिखाओ कोई प्लानिंग। ठीक है, फइन कान लकुम कैदुन फकीदूनी। और ये कुफार उस वक्त हक उस वाक़े हक़हू की भी तकजीब करते हैं, यानी इस दुनिया के अंदर ये उसकी भी तकजीब कर रहे हैं, उसको समझ रखें कि उस रोज हक के झुटलाने वालों की बड़ी खराबी होगी। ठीक है, यानी अल्लाह ताला का जलाल अजीब जैसे नजर आता है इसके अंदर, कि उस जमाने उस वक्त का हाल बयान करते हैं, और फिर हर थोड़ी देर के बाद बहुत बुरा होगा उनके साथ, बहुत बुरा होगा उनके साथ, बहुत बुरा होगा उनके साथ। ठीक है, आगे कुफार के मुकाबले में अहले ईमान के सवाब का बयान है। अब जो है वो कुफार की सजाओं का बयान खत्म हुआ, अब अहले ईमान का, कि इन्नल मुत्तकीना फी ज़िलालियुन व उयून, कि बेशक जो तकवा रखने वाले होंगे ना, यानी जो मेरे मेरे मेरी नाफरमानी से बचने वाले लोग होंगे उनको मुत्तकीन कहते हैं, वो सायों में होंगे, ठीक है। और ये साये वैसे वाले साये नहीं होंगे, ला जलील वला युगनी मिन अल्लहब वाले साये नहीं होंगे, बल्कि यानी इस तमाम परेशानी से बचाने वाले साये होंगे। वह उयून, और नहरों में होंगे, आयनून कहते हैं नहर को, ठीक है, यानी जिसमें से पानी बह रहा होता है, ब्रूक्स भी इनको कह सकते हैं या स्प्रिंग्स जिनको अंग्रेजी में कहते हैं। वह फवाके मिम्मा यश्तहून, और मेवे के जिसमें से वो जो चाहेंगे खाएंगे। तो अब इनका जिक्र है खुलासे तफसीर में, इन अल्फाज में लिखते हैं कि परहेजगार लोग सायों में और चश्मों में और मरगूब मेवों में होंगे, और उनसे कहा जाएगा कि अपने आमाल नेक के सिले में खूब मजे से खाओ पियो, हम नेक लोगों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं, इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। मोहसिन लोगों को यानी एहसान करने वाले, एहसान करने वाले क्या, जो कि नेकी का काम करते हैं और दूसरे लोगों के ऊपर भी एहसान का मामला करते हैं, हम उनको ऐसे जजा दिया करते हैं। और उनसे कहा जाएगा, और ये कुफार नेमाए जन्नत की भी तकजीब करते हैं, ठीक है ना। अब जो है वो यानी इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला जो है ना वो जैसे कि बरसना होता है ना, तो काफिरों के ऊपर अब थोड़ा सा जिक्र ईमान वालों के नेमतों का किया, और फिर जो है ना काफिर का वही यौम इज़्ज़िल, ठीक है। ये लोग जो इन नेमतों का भी तो की तो तकजीब करते हैं ना, सिर्फ जहन्नम के अजाब की तकजीब नहीं करते, बल्कि ईमान वालों के लिए जो नेमतें रखी हुई हैं उनकी भी ये तकजीब करते हैं। तो जान लें कि उस दिन तकजीब करने वालों के लिए बड़ी खराबी होगी। आगे फिर तौबीख व तंबीह है कुफार, यानी ए काफिरों तुम दुनिया में थोड़े दिन और खा लो और बरत लो, ठीक है, कुलू व तमत्तउ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, बेशक तुम लोग तो जुर्म करने वाले हो, तो तुम खा लो और तमत्तउ कलीलन, थोड़ी देर के लिए जो है ना वो आराम कर लो। अच्छा, यहाँ पे किसी ने इस तरह की जो आयात आई है ना उनके ऊपर एक एक नुक्ता लिखा है कि अल्लाह ताला ने काफिरों को जो कि दीन का इनकार करते हैं, दीनी हुक्मों के खिलाफ करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं आम जुबान में, गुनाहगार, राइट, मुजरिम, क्या कहते हैं, जालिम, कुरान मजीद में उनके लिए जालिम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, या उनके लिए जो है वो आसिम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, गुनाहगार, आसी का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन जो मुजरिम का लफ्ज है ना, मुजरिम का लफ्ज जो है वो मुआशरे में गुनाहगार के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि मुआशरे में मुजरिम जो है ना वो उसको कहा जाता है कि जो कि हुकूमत के बनाए हुए कवानीन का इनकार करे या हुकूमत के बनाए हुए कवानीन की खिलाफ वर्जी करे, उसको मुजरिम कहा जाता है, ठीक है। और ये जो इस वक्त दुनिया जिस शक्ल में पहुंच चुकी है, तो उसमें ना में जो गवर्नमेंट्स हैं, जो हुकूमतें हैं, उन्होंने दीन को अलग कर दिया है, और जो 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 मुल्क का निज़ाम होता है उसको दीन से अलग बना दिया है, सेक्युलर निज़ाम बना दिया है, ठीक है। तो सेक्युलर निज़ाम में जो हुकूमत के कवानीन होते हैं उनको तोड़ने वाला मुजरिम कहलाता है, और दीन के जो अहकाम होते हैं उनको तोड़ने वाला जो है वो गुनाहगार कहलाता है। तो आजकल जो जो निज़ाम है उसके अंदर ना इन दोनों चीज़ों को अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो गुनाहगार जो है ना उसका, ये लोग कहते हैं इस सेक्युलर निज़ाम वाले लोग, चाहे वो गवर्नमेंट वाले लोग हों, चाहे जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम होता है, उस एजुकेशन सिस्टम से जो मुतासर लोग होते हैं, ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि भाई गुनाह जो है ना ये तो एक दीनी दीनी चीज़ है, और इसका ताल्लुक तो भाई हर दीन का अपना अपना एक डेफिनेशन है, हर दीन की अपनी अपनी एक डेफिनेशन है कि ये चीज़ नेकी है, ये चीज़ गुनाह है। इस्लाम के अंदर नेकी और गुनाह की एक अलग तारीफ है, हिंदुइज्म के अंदर जो है वो नेकी और गुनाह की अलग अलग तारीफें हैं, क्रिश्चियनिटी के अंदर नेकी और गुनाह जो है वो उसकी अब अलग अलग तारीफें हैं, यहूदियत के अंदर अलग अलग तारीफें हैं। तो ये तो एक 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 रिलीजियस मामला है, और इस रिलीजियस मामले का ताल्लुक तो बस रिलीजियस लोगों के साथ होता है, वो किसी चीज को गुनाह कह देते हैं, किसी चीज को नेकी कह देते हैं, ठीक है ना। लेकिन जुर्म तो वो चीज है जो कि गवर्नमेंट के बनाए हुए कवानीन की खिलाफ वर्जी को कहा जाता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम गुनाह को तस्लीम नहीं करते। गुनाह तो भाई हर बंदे का अपनी अपनी डेफिनेशन गुनाह की। असल डेफिनेशन तो आएगी गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट जो है ना वो जुर्म जिस चीज को कहती है, बस सजा उसी के ऊपर मिलेगी, ठीक है। गुनाह के ऊपर हम सजा नहीं देंगे, ठीक है ना, हम गुनाह पे सजा नहीं देंगे। गुनाह के ऊपर कोई रेप्रिमेंड करने की जरूरत नहीं है, गुनाह के ऊपर कुछ रोकने टोकने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जुर्म के ऊपर रोक टोक की जरूरत है। तो अब जब ये डेफिनेशन अलग अलग हो गए, तो अब जो है ना वो गवर्नमेंट्स जो है उन्होंने ये डिफाइन कर लिया कि भाई अगर दो लोग जो है ना वो आपस में कोई हरकत करते हैं कि जिसको कि रिलीजन जो है ना वो गुनाह कहता है, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो तो भाई हर रिलीजन का ए डाइम अ डजन, जिस तरह कहते हैं ना भाई, ये तो कोई कोई अहमियत ही कोई नहीं इस बात की, मर्जी है उनकी। गवर्नमेंट तो कहती है कि किसी को किसी के मर्जी के बगैर अगर उसके साथ कुछ किया जाए तब ये जुर्म होगा, लेकिन अगर दोनों की मर्जी है तो फिर ये जुर्म नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है ना वो सजा देगी जुर्म के ऊपर, गवर्नमेंट सजा नहीं देगी गुनाह के ऊपर, ठीक है। तो ये अलग अलग कर दिया डेफिनेशंस को, ठीक है। हालांकि अल्लाह ताला के जो कुरान है वो गुनाह के लिए जुर्म का लफ्ज भी इस्तेमाल करता है, गुनाह के लिए जुर्म का लफ्ज भी इस्तेमाल करता है कि ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो जो दीन इस्लाम है ना, ये अहकमुल हाकिमीन का कानून है, ये किसी एक इलाके की गवर्नमेंट का कानून नहीं है, बल्कि ये तो तमाम गवर्नमेंट्स की जो गवर्नमेंट है, बादशाहों का जो बादशाह है उसका बनाया हुआ कानून है, ठीक है। तो जो इंसान है इस दुनिया के अंदर, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो खवास हो, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल्स हो, इंटेलिजेंसिया हो, जो भी हो, उसको तो अहकमुल हाकिमीन के हुक्म को जो है वो मानना है, और उसकी खिलाफ वर्जी से अपने आप को भी बचाना है। और अगर दुनिया के अंदर कोई आपने हुकूमत बनाई है तो उसके अंदर भी अल्लाह का ही बनाया हुआ कानून आपने बनाना है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप मुजरिम भी होंगे और आप जो है वो जालिम भी होंगे, और उसके ऊपर आपको अल्लाह की तरफ से सजा मिलेगी। दुनिया के अंदर वो सजा बेशक नजर ना आ रही हो, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना वो दुनिया में भी सजा दे देते हैं, बेशक दूसरों को नजर ना आ रही हो, और मरने के बाद अल्लाह ताला ने ये वाली सजाएं दे दी, ठीक है, जो कि यहाँ पर जिक्र है, वैलुई यौमिल्मुकद्दिबीन, कि जो लोग भी अल्लाह ताला के बनाए हुए हुक्मों को झुठलाएंगे और उनकी यानी उनको रिगार्ड नहीं करेंगे ना दुनिया के अंदर, तो उस दिन उनके लिए बहुत बड़ी खराबी होगी। तो मुजरिम का लफ्ज जो यहाँ पर आया, तो इससे ये बात साजिश को याद आ गई किस तरीके से आजकल की दुनिया के अंदर गुनाह को और जुर्म को जो है ना बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया है, और गुनाह के ऊपर कोई परेशानी और कोई जो है वो सजा वगैरह की बात करने की जरूरत नहीं है। बस जो भी परेशानी होगी वो जुर्म के ऊपर होगी, जो भी सजा होगी वो जुर्म के ऊपर होगी, और जुर्म क्या बना दिया, जो कि हुकूमत वक्त ने जो डिफाइन किया है वो जुर्म है, और कोई चीज जुर्म नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, वरना आगे चलते ही हैं। अच्छा, और फरमाते हैं कि तुम बेशक मुजरिम हो और मुजरिम का यही हाल होने वाला है, और जो लोग सजाए जुर्म को झुठलाते हैं समझ रखें कि उस रोज हक के झुठलाने वालों की बड़ी खराबी होगी, और उन काफिरों की सरकशी और जुर्म की यह हालत है कि जब उनसे कहा जाता है कि खुदा की तरफ झुको यानी ईमान और अबदियत इख्तियार करो, तो नहीं झुकते, इससे ज्यादा क्या जुर्म होगा, और ये लोग उसके जुर्म होने को भी झुठलाते हैं। सो समझ रखें कि उस रोज हक के छुटलाने वालों की बड़ी खराबी होगी। वैदा कील लहुमर कऊ ला यरकऊ, जब उनसे कहा जाता है इरकाउ कि तुम रुकू करो यानी झुको, ला यरकाउ तो वो नहीं झुक झुकते। यानी यहाँ पर झुकने का मुराद से मुराद एक तो नमाज वाला झुकना भी हो सकता है कि नमाज पढ़ने को उनको कहा जाता है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है, जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ने का तरीका सिखलाया वैसे नमाज नहीं पढ़ते, अपने मजे अपने तरीके से नमाज पढ़ते हैं। आप की नमाज के तरीके के अंदर जो डिफरेंस था, मेन डिफरेंस था, वो रुकू था, ठीक है, तो वो रुकू वाली नमाज नहीं पढ़ते थे क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलाम को मानते ही नहीं थे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर सबमिशन कि अपने आप को झुकाओ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने, अल्लाह ताला के सामने, वो सबमिशन के लिए वो तैयार नहीं होते थे। उस रोज हक के छुटलाने वालों की बड़ी खराबी होगी। और इन तकरीआत व तहदीदात कुरआनिया, तकरीआत का मतलब क्या होता है कि मलामतें, सरजनिश, ठीक है, किसी को उसकी बुराई के ऊपर जो है ना मलामत करना, ब्लेम करना। और तहदीदात का भी मतलब तकरीबन ऐसे ही होता है, डराना, धमकाना, ठीक है। तो कुरान मजीद में ये जो तकरीआत और तहदीदात है ना, मलामतें और डराना धमकाना, इसका मुक्तजा ये था कि सुनते ही डर कर ईमान ले आते, मगर जब इस पर भी उनको असर नहीं तो फिर इस कुरान बलीग, इस कुरान बलीगुल अल्फाज वल इंजार, यानी जब ये इस डराने धमकाने के ऊपर भी बाज नहीं आ रहे हैं ना, तो फिर इतने बलीग कुरान और इतने जो है ना वो डराने वाले कुरान के बाद और कौन सी बात पर ये ईमान लेकर के आए, ठीक है। फबी अय्य हदीसिन बादहू युमिनून, इस पे अगर ईमान नहीं लेकर के आए तो फिर और किस चीज के ऊपर ईमान लाएंगे। इसमें कुफार पर तौबीख और उनके ईमान से आपको मायूस करना है, यानी अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि अगर वो इस बात के ऊपर ईमान नहीं लाए ना तो फिर और तुम कौन सा, आप कौन सा ऐसा तरीका ईजाद ईजाद कर लेंगे कि जिसके ऊपर ये ईमान लेकर के आए, ठीक है। क्या मतलब कि आपको जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है ना, आप उसी तरीके से लोगों को हिदायत पर लाने का काम करें, ठीक है। कोई और तरीका अपनी तरफ से ईजाद करने की कोशिश ना करें कि जिससे कि ये लोग मुसलमान हो जाएं, ठीक है। ये अगर हमारे समझ में आए ये वाली बात, तो हमारे ऊपर जो है ना ये बहुत ज्यादा अप्लाई होती है। किन लोगों के ऊपर? दीन वाले लोगों के ऊपर, ठीक है, जो के दीन में जिनको के बड़ा दीन से फायदा हासिल हो जाता है और दीन से जो है ना फिर वो यानी उनको बड़ा अच्छा एक सिलसिला मिल जाता है दीन का, ठीक है, जिससे कि वो इल्म हासिल करना शुरू हो जाते हैं और उनका अमल भी अच्छा हो जाता है। तो अब ऐसे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनके करीबी रिश्तेदार और दोस्त अहबाब वो भी दीन की तरफ आ जाएं, या वो भी जो है वो इस दीन के सिलसिले से जुड़ जाएं जिस सिलसिले से हम जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और हमें फायदा हो रहा है तो वो भी इसी सिलसिले से जुड़ करके फायदा हासिल करना शुरू कर दें, है ना। ये होता है ना, एक दिल के अंदर ख्वाहिश होती है ना, ठीक है ना, और होनी चाहिए, ये कोई बुरी ख्वाहिश नहीं है, तो बहुत अच्छी ख्वाहिश है, ठीक है। तो अब जो है ना हम क्या करते हैं, जो हमें करना चाहिए कि हम दावत व तबलीग का काम करते हैं, हम उनको जो है ना वो समझाने की कोशिश करते हैं, उनको सिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप जो है ना आप भी जुड़ जाएं, आप भी जो है वो दीनदार बन जाएं, आपको भी वो फायदे हासिल होने शुरू हो जाएं, ठीक है ना। ये एक एक तबी चीज भी है, अल्लाह ताला ने हमारी नेचर में डाला है कि वी लाइक टू इनवाइट अदर पीपल, स्पेशली द वंस दैट वी केयर अबाउट, दैट वी लव, ठीक है ना। लेकिन ये जो दावत और तबलीग का तरीका है ना, इस तरीके के अंदर शर्त है, इस तरीके की एक कंडीशन है कि ये तरीका जो है ना वो कोई हमारा इजाद किया हुआ तरीका नहीं होना चाहिए कि जिसके जरिए से हमारे जो करीबी रिश्तेदार और दोस्त अहबाब हैं वो हम चाहें कि वो दीन के ऊपर आ जाएं, ये हमारा इजाद किया हुआ तरीका नहीं होना चाहिए, बल्कि ये तरीका वही तरीका होना चाहिए जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से हमें सिखाया है, ठीक है ना। उसी तरीके के मुताबिक जो हमने दावत और तबलीग कर ली, वही दावत और तबलीग हमने करनी है, हमने उससे कोई नया तरीका ईजाद करके दावत और तबलीग नहीं करनी, ठीक है ना। हिदायत अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है, ठीक है, और अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं और जिस वक्त चाहते हैं उसको हिदायत देते हैं, और जिसको नहीं चाहते हिदायत देना उसको अल्लाह ताला हिदायत नहीं देते, और हम कुछ नहीं कर सकते उसको हिदायत देने के लिए। हमारे बस में नहीं है किसी को हिदायत देना, किसी को नेक रास्ते के ऊपर लगा देना, ये तो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है, ठीक है। तो हम अक्सर ये गलती करना शुरू हो जाते हैं कि हम शुरू में तो जरा सही तरीके से, यानी जो जो तरीका है ना उस तरीके से किसी को बात समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बात नहीं मानता। भाई उसका भी हिदायत का वक्त नहीं आया, तौफीक का वक्त अभी उसका नहीं आया, तो उसने बात नहीं मानी। तो अब जो है ना वो हम दूसरा कोई तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा ख्याल है कि वो हिदायत पर आ जाएगा। ये बात गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। यानी अंग्रेजी में एक मुहावरा है ना, बाय डूइंग समथिंग बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है ना। हुक हुक का मतलब होता है कि जी आप सीधे रास्ते से कोई काम करें, किसी चीज को अगर आपने फांसना है, किसी को पकड़ना है, तो सीधे रास्ते से उसको पकड़ने की कोशिश करें, और अगर वो सीधे रास्ते से हाथ में नहीं आता तो किसी क्रुकेट तरीके से उसको पकड़ने की कोशिश कर लें, किसी टेढ़े रास्ते से उसको पकड़ने की कोशिश कर लें। दीन में ये जायज नहीं है, बाय हुक और बाय क्रुक काम जायज नहीं है, सिर्फ बाय हुक ही है, सिर्फ बाय हुक ही जायज है, ठीक है। यानी जैसे उर्दू में मुहावरा है उसके लिए कि जो घी जो है ना वो सीधी उंगलियों से नहीं निकलता ना, तो उसको टेढ़ी उंगलियों से निकालने की कोशिश करते हैं, सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकालने की कोशिश कर लो, ठीक है। नहीं, दीन के अंदर ये जायज नहीं है, सीधी उंगली से ही निकालने की कोशिश करनी, ठीक है। तो क्या सीधा तरीका है? वही सीधा तरीका है जो शरीयत और सुन्नत से साबित है, जो हमारे अकाबरीन ने, जिनमें सबसे बड़े हमारे अकाबर कौन है, नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से ही लोगों को दावत तबलीग देनी है, और हमारे मशायख का तरीका ये कोई अलग तरीका नहीं है। यानी हमारे ऊपर जो हमारे शेख हैं, हमारे शेख के शेख हैं, हमारे अकाबिर उलमाए कराम मुस्तनद, ठीक है ना। तो भाई ये इन्होंने कोई अपने नए तरीके को थोड़ी ईजाद किए हुए हैं, ये वही तरीका जो नबी अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया था, उसी तरीके को जो है वो हमारे दौर और हमारे जमाने के मुताबिक हमें समझा रहे होते हैं। तो वही तरीका जो हमारे अकाबिर मशायख और उलमाए कराम ने जो तरीका इस्तेमाल किया या जो तरीका हमें सिखाते हैं, यही तरीका जो है ना ऑल द वे अप टू नबी अलैहिस्सलाम, ये सेम तरीका रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर तफसीलात जरूर हैं क्योंकि 1400 साल गुजर गए और हालात जो है वो दुनिया के बहुत ज्यादा नए नए हालात आ गए, तो अब इसके अंदर एक एक्सपेंशन जरूर हो गई है, लेकिन प्रिंसिपल्स हैव नॉट चेंज्ड, प्रिंसिपल्स आर द सेम, ठीक है ना। तो हमें उन्हीं प्रिंसिपल्स के अंदर रहते हुए दावत व तबलीग का काम करना है, हम कोई गलत तरीके से दावत व तबलीग का काम नहीं कर सकते। इसकी एक मिसाल वैसे तो बहुत सारी और बड़ी स्पेसिफिक इंसान की अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस के मुताबिक बात समझाना ज़्यादा इसमें यानी रेलेवेंट है, उसके बगैर आपको शायद बात समझ में ना आए, ठीक है। लेकिन एक एक ओवरऑल एक बड़ी मिसाल इसकी क्या दी जा सकती है कि जैसे भाई दीन के रास्ते पर लाने के लिए जो है ना वो टेलीविजन के ऊपर जो है वो कोई इस तरह का जैसे रमजान ट्रांसमिशन वाला प्रोग्राम जैसे होता है ना, जिसके अंदर जो है वो गेम्स भी हो रहे हैं, फन एंड और फ्रॉलिक और इस तरह की चीजें हो रही हैं, और उसके अंदर जो है वो बेपर्दा औरतें भी मौजूद हैं, राइट, और उसके अंदर जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा या ज्यादा ज्यादा जो भी हो, पहले शायद थोड़ा होता होगा, आप शायद ज्यादा हो गया, म्यूजिक म्यूजिक भी इसके अंदर शामिल हो गया, आजकल बहुत ज्यादा ये हो रहा है। म्यूजिक जो है ना वो दीनी पैगाम के साथ दाखिल करना, ये कई लोग इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, ठीक है। तो म्यूजिक जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम ने नाजायज करार दिया है, ठीक है, ये दीन के अंदर जायज चीज नहीं है, ये सुन्नत से साबित नहीं है, शरीयत के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। आप दीन को अच्छा बना करके लोगों के सामने पेश करने के लिए उसके अंदर म्यूजिक शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कव्वाली लोग झूठ बोलते हैं कि हमारे जो सूफिया कराम थे ना तो उन्होंने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए, उन्होंने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए जो है ना वो कव्वाली का रास्ता अपनाया, जिसके अंदर जो है वो साज और ये सारी चीजें भी शामिल थी, क्योंकि हिंदुओं का जो है ना वो इन चीजों से जरा ज्यादा लगाव था हिंदुइज्म के अंदर, तो इस वजह से है ना कव्वाली जायज हो गई, म्यूजिक के साथ वाली कव्वाली। भाई कव्वाली जो है वो ज्यादा से ज्यादा अशआर, ठीक है ना, जो कि अच्छे जो है वो अल्लाह की मोहब्बत में नबी अलैहिस्सलाम की शान में अशआर कहना, इससे ज्यादा की इजाजत नहीं है दीन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो हम दीन को तब्दील करके दीन की दावत का काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब जो है ना ये अय हदीसिन बादहु युमिनून, कि भाई ये जो कुरान है और कुरान की तफसीर है, कुरान का पैगाम है, कुरान ही की जो बातें हैं, जब इनसे किसी ने बात नहीं समझी ना, तो अब आपका इजाद किया हुआ कोई तरीका वो किसी को फिर राय हिदायत के ऊपर लाने का काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस किस्म की गलत रविश जो है वो आप बिल्कुल भी इख्तियार ना करें। अच्छा, थोड़ा सा टाइम हमारे पास है, लेकिन साजिश को जरा जगह चेंज करने की जरूरत है। अच्छा चलिए, ठीक है, सवाई में तो हमारे मुकम्मल कर लें। तो ये तो हो गए जी खुलासे तफसीर मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज मारको मसाइल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 4 मिनट ये हमारे पास है। तो फरमाते हैं कि सही बुखारी में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला से रवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिना के एक गार में थे। ठीक है, मिना जो है वहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियां हैं, जो लोग हज पे गए हैं उन्होंने देखा है, या उम्रे वगैरह पे भी देखा होगा यकीन। तो उन पहाड़ों के अंदर बहुत सारे गार भी होते हैं, तो एक गार में थे, अचानक सूरह मुरसलात नाजिल हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पढ़ते जाते थे और मैं आपके मुबारक मुंह से उसको सुनता याद करता जाता था। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद जो है वो बिल्कुल साबिकून अव्वलून सहाबा में से हैं और बहुत ज्यादा इल्म के यानी शौकीन थे, आप से चीजों को सुनते थे और याद कर लेते थे, तो सुनते थे और याद करते जाते थे। आपका दहन मुबारक उस इस सूरह की हलावत से रतब शादाब हो रहा था। ठीक है, यानी क्या सूरत की जो जो जो, जो शान होती है, और इससे जो है ना वो गोया कि आप का जो मुंह के अंदर जो दहने मुबारक होता है, जो थूक होता है, तो वो जो है वो इससे शादाब हो रहा था, यानी एक 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 आशिक के जो है ना वो तस्वीर साजी है अपने माशूक के बारे में। अचानक एक सांप ने हम पर हमला कर दिया। अब पहाड़ का जो गार है तो वहां पर सांप वगैरह इस किस्म की मखलूकात तो होती है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कत्ल का हुक्म दिया, हम उसकी तरफ झपटे, वो निकल भागा। ठीक है ना, अब ये सांप था, सांप जो है वो असल में सांप ही था, या जो है ये जिन भी जो है आपने सुना होगा कि सांप की शक्ल में आते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा के ऊपर हमला करना, क्या पता कि ये कोई जिन ही जो है वो यानी जो शैतान जिन होते हैं, तो वो ही किसी सांप की शक्ल में आकर के उसने हमला करने की कोशिश, अल्लाह आलम। बहरहाल तो उसने जो हमला किया ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल करने का, मारो इसको। ठीक है, तो जो मूजी जानवर होते हैं ना, जो कि इंसानों को अजियत पहुंचाने का काम करते हैं, हदीस में उनके कत्ल करने का हुक्म है, जैसे यानी बिच्छू और सांप और इस तरह के कोई और इस तरह की जो चीज होती है ना, जो कि तकलीफ पहुंचाने का काम करती है, तो उसको मारना जायज है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही हुआ कि आपसे हुक्म दिया तो हम उसकी तरफ झपटे, लेकिन वो निकल भागा। ठीक है, अब सांप बहुत तेजी से जो है वो रेंग करके चला जाता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह तुम उसके शर से महफूज रहे, वो भी तुम्हारे शर से महफूज हो गया, अल्लाह ताला ने तुम्हें भी उसके डसने से महफूज कर लिया और उसको भी तुमसे, यानी तुम उसको मार देते तो गोया के उसके एतबार से तो शरी पहुंचा ना उसको। ठीक है, तो बस अल्लाह ताला का फैसला यहाँ पर था कि ना वो तुम्हें मार सका ना तुम उसको मार सके। इब्ने कसीर तफसीर इब्ने कसीर के अंदर ये वाकया नकल है। इस सूरत में हक ताला ने चंद चीजों की कस्में खाकर कयामत के यकीनी तौर पर आने का जिक्र फरमाया है। इन चीजों का नाम कुरान में बयान नहीं किया गया, जिन चीजों के अल्लाह ताला ने कसम खाई है ना, उनका नाम बयान नहीं किया, अलबत्ता उनकी इस जगह 5 सिफतें बयान फरमाई, खसलतें सिफतें, मुरसरात, आसिफात, नाशिरात, फारिकात, मुल्कियात, जिक्र। ठीक है, ये सिफात हैं उन जिन चीजों की अल्लाह ताला ने कसम खाई है। किसी हदीस मरफू में उसकी पूरी तायीन नहीं आई कि इन सिफात की के मौसूफात क्या है, जिसकी सिफत बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं। ठीक है, जैसे उर्दू में भी कहते हैं ना, अभी मौसूफ जो है ना वो ये काम करते थे, मौसूफ आए, मौसूफ चले गए, तो भाई आप जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं उसको मौसूफ कहते हैं। इसलिए सहाबा व ताबईन की तफसीरें इस मामले में मुख्तलिफ हो गई। ठीक है, जब नबी अलैहिस्सलाम ने किसी चीज की तायीन नहीं कर दी तो फिर जो उलमाए कराम होते हैं वो तफसीर बयान करते हैं अपनी समझ के मुताबिक, ठीक है, अपने इज्तिहाद के मुताबिक। तो अब नबी अलैहिस्सलाम अगर तायीन कर देते तो फिर सहाबा कराम को ये काम नहीं करना होता, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हर चीज़ की तायीन नहीं करी कुरान मजीद के, ठीक है। तो फिर सहाबा ताबीन ने फिर उसकी तफसीरें बयान करी, तो वो फिर इख्तलाफ जो है वो इल्मी इख्तलाफ कहलाता है, क्योंकि उलमा के दरमियान जो इख्तलाफ होता है वो इल्मी इख्तलाफ होता है। यहाँ पर हम आज की क्लास रोकते हैं, वक्त भी मुकम्मल हो गया, और बाकी इंशाल्लाह हमारे मसाइल अगली क्लास में पढ़ेंगे। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته